संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
रास्ता नहीं बदलना है, रोड नहीं बदलना है, सिर्फ मुख बदलना है, सिर्फ दिशा चेंज करनी है। हम हैं तो स्वयं भगवान आत्मा और उसकी सीमा के बाहर कभी गए भी नहीं है। हमें तो अपने चिंतन की सिर्फ दिशा बदलनी है, बिना चिंतन के भी काम होगा नहीं, बिना ध्यान के भी काम होगा नहीं। पर ध्यान का जो विषय है उसे हमें चेंज करना है। आज तक पर पदार्थ हमारे ध्यान का ध्येय बने रहे, पर पदार्थ हमारे चिंतन का विषय बने रहे, और जिस भगवान आत्मा की हमें आराधना करनी है वो हमारे चिंतन का विषय नहीं बना, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, इसलिए दुखी हैं। हमें सिर्फ दिशा बदलनी है, हमें सिर्फ मुख बदलना है, हमें बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है। और बहिर्मुख से अंतर होने के लिए हमारी चिंतन प्रक्रिया में किस तरह की परिवर्तन होना चाहिए जिससे हमारी दृष्टि बाहर पदार्थों से हटकर अंतर के पदार्थों में जाए। आज तक इस भगवान आत्मा ने सारे जगत को जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, यही हमारी स्थिति है। अब हम सारे जगत से हमारी दृष्टि हटकर अपने आत्मा पर आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिन जिन पदार्थों पर हमारी दृष्टि है, जहां जहां हमारा उपयोग अटक रहा है, वो क्यों अटक रहा है उसको हम विचार करें। तो उनमें स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और अधिक से अधिक हमारा शरीर, भाई इतने ये पदार्थ हैं जिनमें हमारा उपयोग लगा हुआ है और निरंतर हम इनके बारे में ही सोचा करते हैं। हमारे चिंतन का विषय क्या होता है, जरा आप छाती पर हाथ रखकर विचार करके देखें कि सुबह से शाम तक हम जो सोचते हैं, हम जो विचारते हैं, उसको एक कागज पर लिखते जाएं रमेश जी, फिर देखो मालूम पड़ेगा कि आपने किस किस के बारे में क्या क्या सोचा। कभी स्त्री के बारे में, कभी पुत्र के, कभी मकान, कभी जायदाद की रुपया देश, बहुत से बहुत शरीर, इनके बारे में ही हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही हमारा सब कुछ है, इनके बिना मानो हम हैं ही नहीं, ऐसी अंदर में हमारी बहुत गहरी प्रतीति है। तो जिनमें अपनापन होता है उसी में हमारी रुचि होती है, और जिन पदार्थों में हमारी रुचि होती है वहीं हमारी चिंतन की प्रक्रिया चलती है, उसी का हमें बार बार ध्यान आता है। जो इंटरेस्ट है ना, वो अटेंशन को डाइवर्ट करता है। हमारा ध्यान बार बार कहाँ जाता है बोलो, जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट माने रुचि, अटेंशन माने ध्यान। तो रुचि ध्यान की नियामक है, अकेले ध्यान की नहीं, विचार की, चिंतन प्रक्रिया की नियामक भी रुचि ही है। हम उन्हीं विषयों पर विचार करते रहते हैं, दिन रात चिंतमन करते रहते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है, जिनमें हमारा अपमन अपनापन होता है। हम ऐसा समझते हैं कि जिनसे हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी उन पदार्थों में ही हमारी चिंतन प्रक्रिया अटकती है। इसलिए सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना होगा कि ये जो 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 चीजें हैं, जो जो हमारे चिंतन को आकर्षित करती हैं, हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं, उन चीजों की वस्तु स्थिति वास्तव में क्या है, हम इसका चिंतन पहले शुरू करें। तो जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और शरीर, जो इतनी चीजें हैं जहां हमारा उपयोग अटकता है, तो जो जैन दर्शन की चिंतन की प्रक्रिया है, जिसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं, जिसे हम द्वादशानुप्रेक्षा कहते हैं, जिसे हम बारह भावनाएं कहते हैं, उनका ऐसा ही क्रमिक विकास है कि वो वहीं से बात शुरू करती है। वो ये कहते हैं जितने इन सब का एक नाम रखा उनने संयोग, किनका नाम रखा शांति संयोग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और शरीर, ये हमारे आत्मा के संयोग में है, ये हमारे संयोगी पदार्थ हैं, माने जहां हम हैं वहां पर ये मौजूद हैं, इतना सत्य है। तो इन सब का हमने क्या नाम रखा, संयोग, और उसके बदले में अपने आत्मा का क्या नाम रखा, स्वभाव। तो सारी दुनिया को हमने दो भागों में बांट दिया, कौन कौन सा, एक स्वभाव और एक संयोग। हम संयोगों में अटके हैं, हमारा चिंतमन संयोगों में अटका है, और हमें वहां से हटाकर उसे अपने स्वभाव पर लाना है, यही तो मार्ग है ना, यही तो आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता है, यही तो मुक्ति का मार्ग है, और यही तो सुखी होने का उपाय है, यही तो इन दुखों से बचने का उपाय है। हमने दो भागों में बांटा, अब जिनको जिनका नाम हमने एक संयोग रखा, उनकी गहराई में हम जाएंगे तो वो सब इतनी बातें आ जाएंगी, शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। आचार्यों ने शरीर को इसमें नंबर एक दिया, प्रमुख माना, क्यों, क्योंकि बाकी के जितने संयोग हैं उनका मेन प्लग जो है वो शरीर है। अपने को लाइट बंद करनी होती है ना एकदम, कहीं पर फ्यूज कुछ हो जाए तो अपन एकदम मेन प्लग बंद कर देते, सारी लाइट चली जाती है, एक एक को बंद करने से काम नहीं होता है। तो शरीर मेन प्लग है, क्यों, कि माँ किसे कहते हैं, जिसने शरीर जिसे पैदा हुआ, पिता कहते हैं जिसे शरीर पैदा हुआ, तो ये मेन प्लग शरीर हो गया। जब शरीर ही अपना नहीं है, नक्की हो जाएगा, तो माता पिता अपने कैसे रहेंगे, ये बाल बच्चे कौन है जो शरीर से पैदा हुए हमारे, उनका मेन प्लग कौन हुआ, शरीर, पत्नी का और हमारा क्या संबंध है, सिर्फ शरीर का, समझ में ना। अब ये सारी मकान कपड़े लत्ते, ये कपड़े लत्ते काय के लिए चाहिए बोलिए, तो आप एक तन ढकने के लिए दो कपड़े चाहिए, तो शरीर से इसका संबंध हुआ ना, रोटी कपड़ा मकान काय के लिए चाहिए, तो माथे पर एक छत चाहिए, तो माथा क्या है, शरीर का अंग क्या नहीं, और पेट को दो रोटियां चाहिए, तो ये इन सारी पदार्थों का जिन्हें हम संयोग नाम देते हैं, जिनसे हम सुख प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, सुखी होने के लिए जिन्हें हमने जोर जोर के इकट्ठा किया है, क्यों, उन सब का मेन पिलक क्या है। अभी हम इतनी मेहनत क्यों करें कि मकान तेरा नहीं है, स्त्री तेरी नहीं है, बेटा तेरा नहीं है, माँ बाप तेरे नहीं है, क्यों, एक एक लट्टू को बुझाने की बजाय, अरे भाई वहां आग लग गई है, एक एक लट्टू बुझाने कब तक जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा, मेन प्लग को बंद कर, ख्याल में आया ना, हम एक एक को समझाने कहां जाएंगे। आचार्यों ने सबसे पहले इस पर चोट की कि तू शरीर तू है कि नहीं ये नक्की कर ले पहले, शरीर तेरा है कि नहीं ये तू नक्की कर ले पहले, और यदि ये नक्की हो गया कि शरीर मैं नहीं हूं, तो ये बाकी की सब चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी, कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परिजन लोए, कि जहां माने जब, जब ये शरीर ही अपना नहीं है, जब देह अपनी नहीं, समझे ना, कहां माने तब, तब स्त्री पुत्र मकान अपने कैसे हो सकते हैं, क्या, जैसे सारे संयोगों का कनेक्शन देह है ना, ऐसी अपनी रिश्तेदारियां दो प्रकार की होती हैं, जानते हैं ना, अपने जो अपनी रिश्तेदारियां हैं कि एक पत्नी पक्ष की और एक पति पक्ष की होती ना, जैसे हमारी पत्नी का भाई है तो अपना साला हो गया, पत्नी का पिता है, पत्नी की माँ है, पत्नी की बहने हैं, वो जितनी रिश्तेदारियां बनेंगी वो पत्नी पक्ष की है ना, और ये पति पक्ष की, पति के पिता हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, तो दो दो एकदम दो अलग अलग पूरे ग्रुप हैं। क्यों? एक ननिहाल वाला ग्रुप और एक पितृपक्ष एक मातृपक्ष वाला, दो ग्रुप हैं कि नहीं अलग अलग? अब ये जो सारे रिश्तेदार दो ग्रुप वाले, एक दूसरे के रिश्तेदार कब हैं कि जब वे दोनों व्यक्ति पति पत्नी हो तब। क्यों? एक पति के गले में वरमाला डालते ही पति के जितने संबंधी हैं वो सब पत्नी के संबंधी हो जाते कि नहीं? और एक लड़की के गले में माला डालते ही लड़की के जितने भी संबंधी हैं वो सब अपने संबंधी हो जाते कि नहीं हो जाते, बोलो? तो उनके लिए अलग अलग मालाएं डालनी पड़ती हैं क्यों? उनसे अलग संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते हैं? तो अब अपन को इनसे संबंध तोड़ना है। क्यों? एक एक से तोड़ेंगे, पत्नी के भाई को लड़ लड़ करके भगाएंगे, घर से निकालेंगे धक्का मार करके भी, तो अभी संबंध टूटने वाला है। क्यों? कि उसकी बहन तो अपने घर में बैठी है, उसकी पकड़ तो चूल्हे तक है, वो टूटने वाली नहीं है रिश्तेदारी, तुम कितना ही प्रयत्न कर है? और पत्नी को तलाक दिया तो सारी रिश्तेदारी एक झटके में साफ हो जाएंगी। क्यों? फिर तुम ससुराल जाओगे तो कोई पानी के लिए पूछेगा? क्यों? कोई बात करेगा तुमसे? सोच लो, ये दोनों बातों में कितना स्पष्ट है कि इसलिए तुम्हें इस ज्यादा झगड़ा पड़ने में की जरूरत नहीं है कि स्त्री पुत्र मकान ज्यादा नगर देश गांव सबसे झगड़ा तोड़ने के लिए। एक स्त्री से झंझट टूटा तो आधे रिश्तेदार सब खत्म, साफ, दक्षिण श्रेणी साफ। क्यों? अब पत्नी को तलाक देने से पत्नी के रिश्तेदार छूट गए, और अपन खुद को तो तलाक होता नहीं है, तो ये पति पक्ष के जितने रिश्तेदार हैं हमारे वे कैसे छूटे? तो ये देह में से अपनापन टूटे तो एक साथ पूरा का पूरा ग्रुप साफ हो जाएगा। कितना सीधा सरल मार्ग है। इसलिए उन्होंने ये पकड़ लिया कि जहां देह अपनी नहीं। मैं तो दो हिस्सों में बांट दी बात, लेकिन दो हिस्सों में बांटने की जरूरत क्या है? जब हमने देह से ही तलाक दे दिया तो देह की पत्नी पत्नी बनी रहे, क्या फर्क पड़ता है? समझे ना? ये तो ऐसा पलक है कि इसको हमने बंद करते ही तो सारी लाइट सूज हो जाएंगे, सब निकल जाने वाली है, सारे संबंध कट ऑफ हो जाने वाले हैं। ये बिंदु पकड़ में आ गया ना असली। क्यों? इसलिए हमारे आचार्यों ने कह दिया जितनी भी धुनाई की वो देह और आत्मा की पृथकता को लेकर के ही की, और यहां तक लिख दिया कि सारे जिनागम में सार क्या है, भगवान महावीर 30 वर्ष तक रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उपदेश देते थे इस भारत वर्ष में, तो उन्होंने इतना कितनी बातें बताई होंगी, क्या समझाया होगा? क्यों? कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। बस भगवान महावीर ने समोषण में बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, क्यों, और गाय भैंस की उपस्थिति में, कहते हैं भगवान महावीर की धर्म सभा में जहां पर एक सौधर्म इंद्र भी बैठा था, क्यों, चक्रवर्ती सम्राट भी राजा सैनिक भी विराजे थे, वहां पर गाय भैंस भी बैठे थे, कुत्ते बिल्ली भी बैठे थे, शेर और गाय एक ही कोठे में बैठे थे सुनने के लिए, गणधर देव और मुनिराज विराजे थे तो ये भी बैठे थे, बैर भाव छोड़ के जन्मजात। और उन्होंने क्या समझाया सबको? एक मुद्दे की बात 30 वर्ष तक लगातार समझाते रहे कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को इसका। अब ये बात तो मध्य की बात तो हमारे सामने आ गई। अब महावीर कहते हैं कि देखो भाई, एक दफे ये बात सुन लेने से, कान में पड़ जाने से और बुद्धि के पकड़ लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि वो अनादि काल का जो इसमें अपनेपन का अभ्यास पड़ा है वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, उसके लिए कोई अद्भुत प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो क्या है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, एक 60 वर्ष के हिंदू को मुसलमानों के मोहल्ले में घिर गया, अकेला पड़ गया बेचारा, तो सब उसे मारने पर उतारू हो गए और उन्होंने कहा तेरे बचने का एक ही उपाय है, उसने हाथ पैर जोड़े कि एक ही उपाय है कि क्या, कि तू मुसलमान बन जा, हल में है ना, तो तुझे हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं तो खत्म, अभी क्या करता बोलो। उसने कहा ठीक है भैया बन जाता हूँ, जान बचानी थी। तो उन्होंने 100 रुपया पिलाया और कहा तू मुसलमान बन गया, चोटी काट दी, मुसलमान बना लिया, बन गया वो। अब वो कमर में दर्द रहता था तो बैठ के खड़ा होता था ना दर्द होता था, खड़े होकर बैठता था दर्द होता था, तो उसके मुंह से निकले हे राम, दर्द होवे ना तो क्या निकला, हे राम। तो अड़ोस पड़ोस के मुसलमान कहे कह रही क्या बकता है, अरे तुझे पता नहीं अब तू मुसलमान हो गया है, अब क्या है राम राम बोलता है, अब हाय खुदा बोल, हाय अल्लाह बोल। बोला बोलूंगा बोलूंगा, चुप रहो शांत रहो। लेकिन राम क्यों बोलता है कि देखो भैया ये राम 60 वर्ष का अंदर में घुसा है, रोम रोम में बसा है, तेरा एक प्याला सोरवा पिलाने से निकल जाएगा, इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है, तो निकलते ही निकलेगा। तू समझता है मैंने एक सोरवा पिला दिया तो मुसलमान बन गया, ऐसे नहीं मुसलमान बनते हैं, क्यों, अंदर से जब तक वो सिद्धांत से स्वीकृत नहीं हो तब तक वो बना क्या नहीं बना, बोलो सौगानी जी नहीं बना ना। तो ऐसे ही भगवान ने बताया कि देह तू नहीं है, और हमने सुन लिया इतना सा सोरवा पीने से मैं देह में नहीं हूं ऐसा मानना नहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं भगवान कहते हैं तो हम भी कहने लगते हैं देह जुदा आत्म जुदा है, और अंदर में जाकर देखें तो देह में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि बैसी की बैसी जमी रहती है। क्यों, यहां बोलते हैं जगन्मल जी कि शुद्ध दारा हुए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, और यहां से प्रवचन खत्म होते ही आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं देखो भैया यदि वो ये नहीं होती तो मेरी तो बड़ी दुर्दशा हो जाती है, ये मेरे को संभाल के रखती है, ये है ये है ये है, हैं क्यों एक मिनट में हैं? अभी तो कह रहा था कुछ नहीं है, एक मिनट में नहीं होता तो मैं ही नहीं होता है, क्यों होने लगता है क्या नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहते तुमने हां भी कह दी, महावीर कहते तुमने हमने कहा तो तुमने हां भी भर दी, तो भी हम कहते हैं कि अभी हां नहीं समझना, तुम इसका बार बार विचार करना, निरंतर चिंतन करना, इस बात का सोचना बार बार, जब बार बार सोचोगे तब जाकर के ये बात निकलेगी। जितनी रटाई तुमने ये की है ना कि ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं, अनंत काल से उसमें एकत्व बुद्धि की रटाई की है, तो थोड़ी बहुत तो ये मैं नहीं हूं की रटाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए वो कहते हैं कि उसका निरंतर चिंतन करना, और उस चिंतन की प्रक्रिया का नाम जैन दर्शन में द्वादशानुपरीक्षा अथवा 12 भावना कहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि सारे संयोग, सारे संयोगों का प्रतिनिधि कौन है, अभी नक्की किया ना अपन ने, शरीर, क्योंकि ये सारे संयोगों के रास्ते शरीर के रास्ते से ही हमसे जुड़ते हैं, शरीर का रास्ता हमसे टूटे तो सारे संयोगों का संबंध हमसे टूट जाएगा। तो इसे शरीर को मुख्य करके उन्होंने चिंतन की प्रक्रिया आरंभ की, उन्होंने कहा सारे संयोग क्षण भंगुर हैं, इसको बोलते हैं अनित्य भावना। अनित्य भावना में किस बात का विचार होता है, सारे संयोग क्षण भंगुर हैं, कि हमने तो ये पढ़ा है कि सबको एक दिन मरना पड़ेगा, राजा राणा छत्रपति और हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अनित्य भावना में ये सोचा जाता है कि सबको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। क्यों? और तुम कह रहे कि संयोग क्षण भंगुर है। हमने तो आज हमें तो यही बारह भावना याद है, हमने लिखी उसने लगा संयोग क्षण भंगुर सभी यह आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय ले धर्मा परंतु आत्मा ध्रुव धाम है। तो ये कहते हैं कि हमने तो ये सुना था कि तुमने ठीक सुना था। आखिर वो देह देह है ना, राजा राणा सत्य सब मर गए, इसे मरना पड़ेगा। तो देह के वियोग का नाम मरण है ना। तो एक सब मर गए और तुम्हें भी मरना पड़ेगा, माने तुम्हारी भी देह का वियोग होगा। इसी का नाम तो देह क्षणभंगुर है, इसी का नाम तो संयोग क्षणभंगुर है। इसी बात को दूसरी तरकीब से कहा जा रहा है। देखो बात वही बात क्या है मुद्दे की, कल पूछ लूंगा कि सारे संयोग क्षण भंगुर हैं। क्षण भंगुर का मतलब जानते हैं कि एक क्षण ठहरेंगे और अगले ही क्षण समाप्त हो जाने वाले हैं। संयोग क्षण भंगुर सभी, ख्याल में ना। सूरज सुबह होगा तो उसकी जो लालिमा दिखाई देती है ना, वो दिन भर लाल नहीं रहने वाला है, थोड़ी देर में वो लालिमा समाप्त हो जाने वाली है। क्यों? और एक प्रकाश का पुंज दिखाई देने लग जाएगा और शाम को जो सूर्य फिर लाल दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर में वो लालिमा कालिमा में बदल जाएगी। ख्याल में है ना। तो जैसे भोर की स्वर्णिम किरण है, भोर सुबह की जो सोने जैसी किरण है वो क्षण भर में विलीन हो जाने वाली है, और सांध की जो लालिमा है वो क्षण भर में विलीन हो जाने वाली है, ऐसे ही देह भी अगले ही क्षण विलीन हो सकता है। कि हो सकता है कि हो जाएगा, कि हो तो जाएगा ही, लेकिन भरोसा तो एक क्षण का भी नहीं है। तो इस सारे संयोग क्षण भंगुर हैं, इस बात का जो चिंतन है उसका नाम है अनित्य भावना। कि ये तुम रोजाना सोचो कि जिसे तुम अपना अपना कह रहे हो, जिसके भरोसे तुम सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हो, वो एक क्षण बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग सब यहां प्रवचन सुनने के लिए आए हैं और घर में बराबर ताला लगा के आए हैं, वो चाबी सब बाबों की जेब में रखी है, लौट के जाओगे तो जो माल घर में है जब सब मिल जाएगा सुरक्षित, गारंटी है कोमलचंद जी? है किसी गारंटी? चिंता मत करना, सबका मिलने वाला है, लेकिन सवाल गारंटी का है। कहने नहीं, 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 मैंने तो बहुत अच्छी जगह, मैंने तो अपने बेटे को सारी अपनी संपत्ति संभाल रखी है, दे रखी है, इसलिए मेरी तो सुरक्षित है। तो बेटा कब आंख बदल देगा इसकी कोई गारंटी है? क्यों? कि मैं तो बैंक में जमा करा रखी है, तो बैंक कब दिवाला निकाल देगा इसकी कोई गारंटी है? कि सबकी गारंटी हो जाएगी लेकिन तुम घर पे पहुंच जाओगे लेने के लिए, इसकी गारंटी है क्या? सबकी गारंटी की बात करते हो, अपनी गारंटी की बात नहीं करते हो। कहते एक दफे तुम्हें नक्की कर लो ये सारे संयोग क्षण भंगुर हैं, तो तुम्हें ये संयोगों पे से दृष्टि हट जाएगी, और संयोगों पे से हटेगी तो कहां जाएगी? मुल्ला की दौड़ का मस्जिद तक दौड़ के अस्वभाव पर जाएगी, स्वभाव पर दृष्टि जाएगी तो तुम आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। तो हमारी चिंतन की प्रक्रिया ऐसी होना चाहिए कि जो पर से हटकर स्वभाव की ओर जाती हो, उसी का नाम है बारह भावना। तो अजैनाचार्यों ने आत्मा से परमात्मा बनने की विधि में भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान माना है, और इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।